तर पुरुष रोगातुर पुरुष रोग से छूट जाता है, बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से छूट जाता है और आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है। रोगार्तो मुच्यते रोगान बद्धो मुच्यते बंधनात् भयान मुच्यते भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदा। जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्त्र नाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। दुर्गाण्यति तरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन् नामं सहस्त्रेण नित्यं भक्ति समन्वितः। जो मनुष्य वासुदेव के आश्रित और उनके परायण है वह समस्त पापों से छूटकर विशुद्ध अंतःकरण वाला हो सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायणः सर्व पापे विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्। वासुदेव के भक्तों का कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता है तथा उनको जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भी भय नहीं रहता है। न वासुदेव भक्तानां अशुभम विद्यते क्वचिन् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम् नै वोपजायते। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह आत्म सुख क्षमा लक्ष्मी धैर्य स्मृति और कीर्ति को पाता है। इमं स्तवम अधीयानहं श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्म सुख शांति श्री धृति स्मृति कीर्ति भी। पुरुषोत्तम के पुण्यात्मा भक्तों को किसी दिन क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती। न क्रोधो न च मात्सर्यम न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। स्वर्ग सूर्य चंद्रमा तथा नक्षत्र सहित आकाश 10 दिशाएं पृथ्वी और महासागर ये सब महात्मा वासुदेव के प्रभाव से धारण किए गए हैं। द्योश चंद्रार्क नक्षत्रा खम दिशो भूर्महो दधी वासुदेवस्य वीर्येण विद्रितानि महात्मनः। देवता दैत्य गंधर्व यक्ष सर्प और राक्षस सहित ये स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत श्री कृष्ण के अधीन रहकर यथा योग्य बरत रहे हैं। ससुरासुर गंधर्वम सयक्षो रग राक्षसम जगन वसे वर्ततेदम कृष्णस्य सचराचरम। इंद्रियां मन बुद्धि तेज बल धीरज क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये सब के सब श्री वासुदेव के रूप हैं ऐसा वेद कहते हैं। इंद्रियाणि मनो बुद्धि सत्वम तेजो बलम धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुम क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एव च। सब शास्त्रों में आचार प्रथम माना जाता है, आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत हैं। सर्वागमानाम आचारहं प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभुवो धर्मं धर्मस्य प्रभुरच्युतः। ऋषि पितर देवता पंच महाभूत धातुएं और स्थावर जंगम संपूर्ण जगत ये सब नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। ऋषियां पितरो देवां महाभूतानि धातवः जंगमं जंगमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम्। योग ज्ञान सांख्य विद्याएं शिल्प आदि कर्म वेद शास्त्र और विज्ञान ये सब विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्याम शिल्पादि कर्म च वेदाम शास्त्राणि विज्ञानम एतत् सर्वम जनार्दनान। वे समस्त विश्व के भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं जो अनेक रूपों में विभक्त होकर भिन्न भिन्न भूत विशेषों के अनेकों रूपों को धारण कर रहे हैं तथा त्रिलोकी में व्याप्त होकर सबको भोग रहे हैं। एको विष्णुर महान भूतम पृथंग भूतान्यनेकशः त्रिलोकान व्याप्य भूतात्मा भुंक्ते विश्व भोगव्ययः। जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता हो वह भगवान व्यास जी के कहे हुए इस विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। इमं स्तवं भगवतो विष्णु और व्यासेन कीर्तितं पठेय इच्छेत् पुरुषां त्रयः प्राप्तुं सुखानि च। जो विश्व के ईश्वर, जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं, वे कभी पराभव नहीं पाते हैं। विश्वेश्वरमजं देवं जगतां प्रभवाप्यं भजन्ति ये पुष्कराक्षं नते यान्ति पराभवम्। इस प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब हम हरिभक्ति विलास से नाम की महिमा के संबंध में कुछ बातें बताएंगे और विभिन्न शास्त्रों से जो श्लोक हैं उनको पढ़ के सुनाएंगे। स्कंद पुराण में लिखा है, न देश कालावस्थासु शुद्ध्यादिकम् अपेक्षते किंतु स्वतंत्र मे वेतन नाम कामिते कामदम। इसका अर्थ है कि ना तो भगवान के नाम लेने में स्थान की पवित्रता की आवश्यकता है, कोई भी स्थान हो, और ना समय की आवश्यकता है कि कोई समय शुद्ध है या अशुद्ध है, या किसी अवस्था की भी आवश्यकता नहीं कि कोई अवस्था आप शुद्ध अवस्था में है अशुद्ध अवस्था में हो, कोई आवश्यकता नहीं है। ये भगवान का नाम इतना स्वतंत्र है कि इसमें किसी भी समय, किसी भी स्थान पर और किसी भी अवस्था में आप ले सकते हैं नाम, और ये जो भी कामनाएं हैं उनको पूरी करता है। अब वैश्वनर संहिता में क्या लिखा है, न देश काल नियमो न शौच शौच निर्णय परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्यते। इसमें भी यही बात बताई गई है कि ना तो स्थान का कोई नियम है और ना ही समय का नियम है और ना ही पवित्रता या अपवित्रता का कोई निर्णय किया जाता है भगवान का नाम लेने में। राम राम के केवल उच्चारण मात्र से ही कोई व्यक्ति सब पापों से और बंधनों से छूट जाता है। इसके बाद वैष्णव चिंतामणि में नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज के प्रति जो बातें बताई हैं उसमें वो कहते हैं, न देश नियमो राजन न काल नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो विष्णु नामानु कीर्तने। क्या कहते हैं कि ना तो समय, ना तो स्थान का नियम है और ना ही समय का कोई नियम है भगवान के नाम कीर्तन में, इसमें कोई संदेह नहीं है, जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए नाम में। और कालोस्ति दाने यज्ञे च स्नाने कालोस्ति संजपे विष्णु संकीर्तने कालोम नास्त्यत्र पृथ्वी तले। दान के लिए उचित काल होना चाहिए, विचार किया जाता है कि भाई किस समय दान देना है किस समय नहीं दान देना है। यज्ञ के लिए भी उचित काल का निर्णय किया जाता है कि किस समय करना है किस समय नहीं करना है। स्नान के लिए भी होता है कि किस दिन स्नान कहाँ पर करना है, और जो दूसरे मंत्रों के जाप में भी इन सब चीजों का विचार किया जाता है। विष्णु के संकीर्तन में इस पूरी पृथ्वी में कहीं भी काल का निर्णय नहीं किया जाता है। और श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद में बताया गया है, एतन् निर्विद्यमानानां इच्छतां न कुतो भयम् योगिनां नपनिर्णीतं हरेर्नामानु कीर्तनम्। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस भौतिक संसार से विरक्त हो गया है या बहुत परेशान हो गया है, निराश हो गया है, और अब वो इन सब संसार के भय से मुक्त होना चाहता है, तो ऐसे योगियों के लिए हे राजन, हे राजा परीक्षित, यही निर्णय हुआ है कि वे हरि भगवान के नामों का बारंबार कीर्तन करें। वराह पुराण में ये लिखा है, नारायण अच्युतानंत वासुदेवेति यो नरः सततम् कीर्तयेत् भूमि याति मल्लयताम् सही। तो भगवान वराह देव पृथ्वी देवी से कह रहे हैं कि नारायण अच्युत और अनंत और वासुदेव, इस प्रकार से अगर निरंतर कोई व्यक्ति कीर्तन करता है तो वो मुझ में लीन हो जाता है, वो मतलब कृष्ण चेतना से युक्त हो जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है। गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, किम करिष्यति सांख्येन किम योगैर नर नायक मुक्तिमिच्छसि राजेन्द्र किम गोविंद गुरु गोविंद कीर्तनम। तो इसमें कहा गया है कि सांख्य योग और जो कर्म योग है इनसे क्या आवश्यकता है, कुछ इनकी क्या आवश्यकता है, अगर आपको मुक्ति पाना है तो गोविंद का कीर्तन करो। स्कंद पुराण में लिखा है सकृत उच्चरितम येन हरिरित्यक्षरे द्वयम् बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिसने एक बार भी हरि नाम के जो दो अक्षर हैं इनका उच्चारण कर लिया है तो समझ लो कि उसने मोक्ष के मार्ग में चलने के लिए अपनी कमर कस ली है, कमर कस के तैयार हो गया है, वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और भारत विभाग में ऐसा लिखा हुआ है प्राणे प्रयाण पाथेयम संसारे व्याधि भेषजम दुख शोक परित्राणम हरिरित्यक्षरे द्वयम्। प्राण प्रयाण पाथेयम, जब प्राण निकलते हैं तो यात्रा शुरू होती है प्राणों की, शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो उनकी जो यात्रा शुरू होती है तो उस यात्रा के लिए क्या साथ आप ले जा सकते हो जो आपको सुविधा प्रदान करे, आप कोई चीज नहीं ले जा सकते उस समय। लेकिन ये जो भगवान का नाम है ये है आपका पाथेय, पाथेय मतलब रास्ते के लिए सामान जो आप जोड़ रहे हैं वो ये है जब शरीर छोड़ते हैं आप। संसार व्याधि भेषजम, और संसार रूपी जो बीमारी है भव रोग जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, इसकी ये दवाई है भगवान का नाम। और दुख शोक है परित्राणम, और दुख और शोक से बिल्कुल जो है ना जो मुक्त करे वो क्या है, ये दो अक्षर हरि नाम के हैं या कृष्ण नाम के और राम नाम के हैं। नारदी पुराण में क्या लिखा है, नव्यम नव्यम नाम धेयम मुरारे यद्यत चेतन गे पीयो से पुष्टम ये गायंती त्यक्त लज्जा सहर्षम जीवन मुक्ता संशयो नास्ति तत्र। इसमें क्या लिखा है कि मुरारी का जो नाम उच्चारण है यह हमेशा नया नया ही रहता है, और जो भी व्यक्ति गाता है उसको पुष्टि प्राप्त होती है, अमृत पी करके जो पुष्टि प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है। और जो लोग जो है लज्जा को छोड़ करके और हर्ष के साथ गान करते हैं तो वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, इस जीवन में ही वो मुक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब तक आपको नाम लेने में लज्जा आती है, नाम बोलने में लज्जा आती है, तब तक आप बंधे हैं कर्म बंधन से। और जहां आपकी लज्जा दूर हो गई तो आप समझो कि आप कर्म बंधन से मुक्त हो गए। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में लिखा है आपन्ना संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन तथा सद्यो विमुच्येत यन विभेति स्वयं भयम्। जो व्यक्ति विवश होकर के भी, मतलब ऐसे चाहता नहीं है भगवान का नाम लेना, लेकिन विवशता में वो अगर नाम लेता है बहुत बड़े कष्ट में पड़ जाए संसार के, तो मजबूरी में भी अगर वो नाम ले रहा है, है? तो भी जो है ना वो सब भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान के सामने तो भय साक्षात भी भयभीत होता है। और तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी की स्तुति है, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की, यश्यावतार गुण कर्म विडम्बनानी नामानी येषु विगमे विवसा गृणंती तेनेक जन्म समलम सैव हित्वाम संयान्त्यत्वामृतामृतम तमजम प्रपद्ये। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि जिनके अवतारों और उनके गुणों उनके कर्म और उनकी लीलाओं का और उनके नामों का जो प्राण छोड़ते समय विवश होकर के भी अगर उच्चारण करते हैं तो वे अनेक जन्मों के पाप से अचानक ही मुक्त होकर के सहसैव तो अचानक ही वो छूट जाते हैं अनेक जन्मों के पापों से। संयान्त पाप मृतामृतम, और खुला हुआ जो अमृत का द्वार है वो उसमें प्रवेश करते हैं, ऐसे भगवान की मैं शरण लेता हूं। और फिर छठवें स्कंद में श्रीमद् भागवत में ये लिखा है, एतावताल मध्य निर एतावताल मघ निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम नाम विक्रुष्य पुत्र मघवान यद जामिलोपी नारायणे तिम्रियमान इयाय मुक्ति। इसमें सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, अजामिल की कथा से जो है उन्होंने निष्कर्ष निकाला, वो क्या कहते हैं कि ये तो बहुत पर्याप्त है, पर्याप्त से भी ज्यादा पर्याप्त है, है अगर भगवान के गुण कर्म और नामों का संकीर्तन किया जाता है तो जितने भी पाप है उनको दूर करने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा पर्याप्त है, कोई आवश्यकता नहीं और कुछ करने की। क्योंकि पुत्र अपने पुत्र को भी जना, जो पापी अजामिल था उसने नारायण नाम से उच्चारण किया और मरते समय उसको जो है ना मुक्ति प्राप्त हो गई। फिर वैशाख महात्म में अम्बरीश के प्रति नारद जी कहते हैं, तदेव पुण्यम परमम पवित्रम गोविंद गेहे गमनाय पत्रम तदेव लोके सुकृतैक सत्रम यदुच्यते केशव नाम मात्रम तदेव पुण्यम परमम पवित्रम। इसमें ही सबसे बड़ा पुण्य है और यही सबसे अधिक पवित्र है। और गोविंद गेह गमनाय पत्रम, ये जो है ना आपको एक प्रकार से अथॉरिटी लेटर की तरह है, अधिकार पत्र के समान है, गोविंद के घर में जाने का। भाई किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हो तो कोई चिट्ठी लेके जाते हो, तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये आपकी चिट्ठी, आपको मिल गई अधिकार पत्र मिल गया गोविंद के घर जाने का। तो देव लोके सुकृता के सत्रम, इस संसार में सबसे बड़ा जो ना जो अनुष्ठान है पुण्य का वो भी एकमात्र यही है कि केशव के नाम मात्र का ही उच्चारण किया जाए। फिर बारहवें स्कंद में लिखा है, कलेर दोष निधे राजन यस्ति एको महान गुणः कीर्तना देव कृष्ण मुक्ति संगः परम ब्रजेन। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के अंत में परीक्षित महाराज को समझाते हैं कि हे महाराज, ये कलयुग दोषों का निधि है। निधि का मतलब भंडार, निधि जैसे समुद्र कहते हैं जल निधि, यानी पानी का भंडार, पानी ही पानी है, उसी प्रकार से कलयुग दोषों का भंडार है, दोषों का समुद्र है, दोष निधि रतन अस्ति ये को महान गुण। लेकिन इसमें एक इतना महान गुण है कि सब दोष उसके ढक जाते हैं। कलयुग में इतना महान गुण है और वो क्या है, कीर्तना देव कृष्ण, कृष्ण के जो है ना नामों का गुणों का अगर कीर्तन किया जाए तो मुक्त संगः परम ब्रजेत, सब पापों से मुक्त होकर के वो परम यानी परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है। फिर गरुड़ पुराण में शौनक ऋषि जो है अम्बरीश महाराज से कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि छसि परम ज्ञानम ज्ञान अत्यंत परम पदम तदादरेण राजेन्द्र गुरु गोविंद कीर्तनम। कि हे महाराज, अगर आप परम ज्ञान पाना चाहते हो और उस परम ज्ञान से आप परम पद की प्राप्ति करना चाहते हो तो आदर पूर्वक क्या करो, गोविंद का कीर्तन करो। महाभारत में भगवान स्वयं कह रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं, ऋण में तंत्र बृद्धम में हृदय अन्नाप सरपति यद गोविंदे थी चुक्रोश कृष्ण आमाम दूर है वासिनम। भगवान कहते हैं कि मुझको दूर समझ करके कि मैं बहुत दूर हूं, द्वारका में हूं, और कृष्णा यानी द्रौपदी कहां पर थी, हस्तिनापुर में थी, है ना, तो मुझको बहुत दूर मान करके उसने मुझे पुकारा कि रक्षा करो मेरी, तो वो जो नाम द्रौपदी ने पुकारा था मेरा, तो वो जो है ऋण वो जो है मेरे हृदय में और बढ़ता जा रहा है, वो दूर नहीं हो रहा है। द्रौपदी का जो ऋण है कि उसने जो मेरा नाम लिया था तो ऋण मेरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर ऋण चुकता नहीं करते आप तो क्या होता है, ऋण बढ़ता जाता है। तो कृष्ण कहते हैं कि वो दूर हो नहीं रहा, वो ऋण बढ़ता जा रहा है मेरा। द्रौपदी ने कैसे पुकारा था कृष्ण को, गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरव परिभूता माम किम न जानासी केशव। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्ति नाशन कौरवार्णव मग्ना माम उद्धर स्व जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नाम पाहि गोविंद कुरु मध्य वसीदति। तो द्रौपदी ने कैसे पुकारा था, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे कृष्ण, गोपियों को तुम बहुत प्यारे हो, कौरवों के द्वारा जैसे मैं कष्ट पा रही हूँ, तुम क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हो। हे केशव, हे नाथ, हे लक्ष्मी के नाथ, हे ब्रज के नाथ और हे दुख दूर करने वाले, कौरवों के समुद्र में मैं डूब रही हूँ, कौरव रूपी समुद्र में मैं डूब रही हूँ, मेरा आप रक्षा करो, मेरा उद्धार करो। हे जनार्दन, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगी, हे विश्व की आत्मा, हे विश्व के पालन करने वाले, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, कौरवों के मध्य में मैं बहुत कष्ट भोग रही हूँ। आदि पुराण में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, आदि पुराण में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, गीत्वा तो मम नामानि नर्तयेन मम सन्निधौं इदं ब्रवीमि ते सत्यं कृतोऽहं तेन चार्जुन। कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे नामों का गान करते हुए मेरे सामने या मेरे निकट नृत्य करता है, तो हे अर्जुन, मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं कि उसने मुझे खरीद लिया। जो व्यक्ति मेरे नामों का गान करते हुए मेरे सामने नृत्य करता है, मेरे निकट नृत्य करता है, तो मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं कि वो मुझे खरीद लेता है। फिर कृष्ण क्या कहते हैं, गीत्वा च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौं तेषाम् अहम् परिक्रेतो नान्यक्रेतो जनार्दनः। फिर कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे नामों का गान करते हुए मेरे सामने रोता है, तो उसने तो मुझे पूरी तरह से खरीद लिया, हमेशा के लिए खरीद लिया है, और किसी ने मुझे आज तक खरीदा नहीं है, कृष्ण कहते हैं। फिर विष्णु धर्म में प्रहलाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जितम तेन जितम तेन जितम तेन ती निश्चितम जेवाग्रे वर्तते यस हरिरित्यक्षरे द्वयम्। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं, जितम तेन जितम तेन जितम तेन ती निश्चितम, तीन बार क्या कहते हैं, उसी ने जीत लिया, उसी ने ही जीत लिया, उसी ने जीत लिया निश्चित रूप से, किसको, भगवान को। जेहवाग्रे वर्तते, जिसकी जेहवा के अग्र भाग में हमेशा रहता है क्या, दो अक्षर हरि नाम के, उसने निश्चित रूप से भगवान को जीत लिया। अब प्रभास खंड में क्या लिखा है, मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृत परिगीतम श्रद्धया हेलयावाम भृगुवर नर मात्रम तारयेत् कृष्ण भृगुवर नर मात्रम तारयेत् कृष्ण नाम। तो इसमें ये दिखा है कि मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानाम, ये मधुर से भी अधिक मधुर है और मंगलों से भी अधिक मंगल है। सकल निगम वल्ली सत्फलम, संपूर्ण वेद रूपी कल्पलता का ये सत्फलम यानी बहुत श्रेष्ठ फल है, वेदों की तुलना की गई है कल्पलता से, तो उसका जो ना श्रेष्ठ फल ये है, सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्त स्वरूपम, और चित्त स्वरूप यानी चेतन स्वरूप है ये भगवान का नाम जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अचेतन हो, है ना, जैसे कि संसार में कोई भी नाम होता है तो अचेतन होता है, उसमें कोई चेतना नहीं है, लेकिन नाम में मतलब पूरी चेतना है, चित्त स्वरूपम। सकृत भी परि गीतम श्रद्धया हेलयावा, एक बार भी अगर उच्चारण किया जाए, चाहे श्रद्धा पूर्वक हो या अवहेलना पूर्वक भी, अनादर पूर्वक भी, भगवर नर मात्रम तारयेत् कृष्ण नाम, ये कृष्ण नाम जो है मनुष्य मात्र को तार देता है। इसके बाद विष्णु धर्मोत्तर में और विष्णु रहस्य, इन दोनों शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, एतदेव परम ज्ञानम, एतदेव परम तपः, एतदेव परम तत्त्वम् वासुदेवस्य कीर्तनम्। तो क्या इसमें कहा गया है कि यही केवल परम ज्ञान है और एतदेव परम तपः, और यही सबसे बड़ा तपस्या है, सबसे बड़ा ज्ञान यही है और सबसे बड़ी तपस्या भी यही है। क्या? भगवान का कीर्तन, वासुदेव का कीर्तन करना। और एतदेव परम तत्त्वम्, और यही सबसे बड़ा तत्व है, सबसे बड़ा रहस्य है। इसके बाद वैष्णव चिंतामणि में श्री शिव जी उमा से क्या कहते हैं, ये संवाद है उमा और शिव के बीच में। तो शिव जी कहते हैं, अगच्छत स्मरणम विष्णु बहवा यासेन साध्यते ओष्ठ स्पंदन मात्रेण कीर्तनम तु ततो वरम। अगच्छत स्मरणम विष्णु, विष्णु का जो स्मरण है वो पापों को दूर करने वाला है, लेकिन इसमें तो बहुत प्रयास करना पड़ता है। विष्णु के स्मरण में तो बहुत प्रयास करना पड़ता है, मन जब शुद्ध नहीं है तो विष्णु का स्मरण होता नहीं। लेकिन ओष्ठ स्पंदन मात्र, लेकिन नाम में क्या है, ओठ हिलाने की आवश्यकता है केवल। आपका मन अगर शुद्ध नहीं भी है तो अभी ओठ हिलाने की मात्र है, तो ये कीर्तन भी जो है ना, मतलब बहुत श्रेष्ठ होता है। और भी अन्यत्र लिखा हुआ है, ये न जन्म सतह पूर्वम वासुदेव समर्पित, वासुदेव समर्चित तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। जिन्होंने सैकड़ों जन्मों में, पिछले सैकड़ों जन्मों तक जिसने भगवान की अच्छी प्रकार से आराधना की है, पूजा की, उसी के मुख में भगवान के जो नाम है निरंतर निवास करते हैं। कोई व्यक्ति अगर अपने मुंह से हमेशा भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, इस तरह से कई सौ जन्मों तक उसने भगवान की अच्छी प्रकार से आराधना की है। और फिर विशेष रूप से कलयुग में विष्णु रहस्य में क्या लिखा है, यदभ्यर्चय हरिम भक्त्या कृते कृतो सतैरपि फलम प्राप्नोत्य विकलम कलो गोविंद कीर्तनात्। सतयुग में सैकड़ों यज्ञों के द्वारा जब अच्छी प्रकार से भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना की जाए तो जो फल प्राप्त होता है वो फल पूरा को पूरा प्राप्त होता है कलयुग में, कैसे, गोविंद के कीर्तन से, भगवान के नाम कीर्तन से। फिर द्वादश स्कंद में, बारहवें स्कंद में भागवत में क्या लिखा है, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुख द्वापरे परिचर्यायाम कलोतन हरि कीर्तनाम। तो कृते अध्याय तो विष्णु, सत्योग में जो फल प्राप्त होता है विष्णु के ध्यान से, और त्रेतायाम यजतो मुख, और त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा आराधना करने से, और द्वापरे परिचर्यायाम, और द्वापर युग में जैसे मंदिर की पूजा से प्राप्त होता है वही फल कलोतन हरि कीर्तन, हरि कीर्तन से प्राप्त होता है। फिर ग्यारहवें स्कंद में भागवतम में क्या लिखा है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजन्ति ही सुमेधसा। कलयुग में जो है भगवान की पूजा होती है किस रूप में, कृष्ण वर्णम, वो चैतन्य महाप्रभु हैं जो कि कृष्ण नाम का हमेशा उच्चारण करते हैं, तो सा अकृष्णम, और जिनके अंग ज्योति जो है अकृष्ण, यानी गोरी है, गौरांग है, और सांगोपांग अस्त्र पार्षदम, अंग उपांग अस्त्र और पार्षदों के सहित, तो उनके अंग नित्यानंद प्रभु हैं और उपांग अद्वैताचार्य हैं और अस्त्र गदाधर पंडित हैं और पार्षद श्रीवास ठाकुर हैं। तो इनकी पूजा जो है सुमेधसा, जो ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं वो इस संकीर्तन यज्ञ के द्वारा इन पांच तत्वों की पूजा करते हैं। पांच तत्व, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, तो इसकी पूजा होती है, पांच तत्वों की पूजा होती है संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। स्कंद पुराण में क्या लिखा है, महाभागवता नित्यम कलौ कुर्वन्ती कीर्तनम्। कलयुग में जो महाभागवत है, जो बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो क्या करते हैं? कीर्तन ही करते हैं। कलयुग में जो महाभागवत का जो लक्षण है वो ये है कि वो कीर्तन करते हैं। बृहन्नारदी में भी लिखा है, नारद जी कहते हैं, हरेर नाम एवं मम जीवनम कलो नास्त्येव नास्त्येवम नास्त्येव गतिरन्यथा। नारद जी क्या कहते हैं कि हरि नाम और केवल हरि नाम और केवल हरि नाम ही मेरा जीवन है, कलयुग में और अन्यथा गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। तीन बार कहते हैं नाम एव और फिर नास्त्येव तीसरी बार, तीन बार इसको भी कहा कि अन्यथा गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसके बाद वैष्णव चिंतामणि में शिव जी कहते हैं, ईशो हम सर्व जगताम नाम नाम विष्णु हि जाप कहा सत्यम सत्यम बदाम्ये सैम हरेर नाम गतिर नाम। शिव जी कहते हैं कि संपूर्ण जगतों का, ब्रह्मांडों का मैं ईश्वर हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं? विष्णु के नामों का जप करता हूं। तो शिव जी कह रहे हैं कि मैं ईश्वर का जो है, जो अधिकार मैंने प्राप्त किया है वो कैसे प्राप्त किया है? विष्णु के नामों के जप से। तो आप समझो कि विष्णु के नाम का क्या जो नाम महात्म है, महिमा है। कि शिव जी भी कहते हैं कि मुझे जो शक्ति प्राप्त हुई है तो वो विष्णु के नाम से। तो सत्यम सत्यम वदाम्ये तत् हरे नाम गतिर नाम। तो शिव जी कहते हैं सत्य बोल रहा हूं मैं, सत्य बोल रहा हूं कि हरे नाम ही मनुष्यों की गति है। फिर भी लोग जो है हरि नाम का उच्चारण न करके शिव का कीर्तन करते हैं, दुर्गा का कीर्तन करते हैं, जबकि स्वयं शंकर जी कह रहे हैं कि सत्य बोल रहा हूं मैं भी विष्णु के नामों का जप करने वाला हूं। तो उनके हाथ में रुद्राक्ष की जो माला है, जप माला है, किस लिए है? वो विष्णु के नामों का की।